તારીખ 11/5/1996 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન નંબર 6 અને 7 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 6.
કામ એવા ન હોવા જોઈએ કે પોતાને વિચાર વાંચનમાં દખલ થાય. પ્રશ્ન વો હૈ કે આત્મા કો પહેચાનને કા અભ્યાસ કિસ પ્રકાર સે કરના, ક્યા બહાર કે સબ કામ હમ છોડ દે, અનેક પ્રકાર કા ઉદય હૈ, જિમ્મેવારી હૈ, વો સબકો છોડ દે, ક્યા ઉસકા સમાધાન દે દે. ખુદ કો અંદર સે, અપને કો અંદર સે ખટક રખ કરકે, ખટક મને જાગૃતિ રખ કરકે વાંચન કરને કા સ્વાધ્યાય, વાંચન મને સ્વાધ્યાય કરને કા સમય ટાઈમ ખોજ લેના ચાહીએ. કિતના ભી કામ હોય અપના સ્વાધ્યાય આદિ જો આત્મા કી ખોજને કે લીએ બાહ્ય સાધન હૈ ઉનકે લીએ દરકાર કરકે ખટક રખ કરકે મતલબ દરકાર રખ કરકે અપના સમય નિકાલ લેના. હમારે કાર્ય એસે નહીં હોને ચાહીએ કે હમકો વિચાર ઓર સ્વાધ્યાય મેં દખલ પહોંચે, એસે હમારે કાર્ય નહીં હોને ચાહીએ. સ્વાધ્યાય ઓર વિચાર મેં દખલ કબ પહોંચતી હૈ કે ઉપાધિ વિશેષ હોતી હૈ તો. અબ બાત એસી રહી કે કાર્ય છોટા હૈ યા બડા હૈ, કુછ ભી કિસી ભી પ્રકાર કા કાર્ય હો છોટા યા બડા, પરંતુ જીવ ઉપાધિ જીતની કરતા હૈ ઉતની હોતી હૈ. કુછ લોગ એસે હોતે હૈ કે બહોત છોટે છોટે કામ મેં બહોત બડી ઉપાધિ મેં આ જાતે હૈ, કુછ લોગ એસે હોતે હૈ કે બડે કામ મેં ભી ઉતના નહીં રખતે, દિમાગ પે બોજા નહીં રખતે. ઇસકા મતલબ યે હુઆ કે કિસી ભી પ્રકાર કા ઉદય હો, કાર્ય તો ઉદય અનુસાર હૈ, હમે જ્યાદા ઉપાધિ કરની હી નહીં ચાહીએ. ઉપાધિ કરેંગે જ્યાદા તો ભી ઉપાધિ કરને સે કોઈ કામ મેં ફરક પડ જાયગા, ઉદય મેં ફરક પડ જાયગા, એસા તો હોને વાલા હૈ નહીં. ઓર કમ ઉપાધિ રખે તો કોઈ કામ બિગડ જાય, જ્યાદા ઉપાધિ રખને સે સુધર જાય, એસા તો કુછ હોને વાલા નહીં હૈ. ક્યોંકિ જો હોને વાલા હૈ અપને પ્રારબ્ધ અનુસાર હોતા હૈ, ઉપાધિ અનુસાર નહીં હોતા હૈ. ઉપાધિ સે કોઈ સુધાર બગાડ નહીં કિયા જાતા, ઇસલિયે હમે હમારે કાર્ય એસે હોના ચાહીએ, મેને હમારે કાર્ય કે પ્રતિ હમારે પરિણામ એસે હોને ચાહીએ, અર્થો નિકલતા હૈ. के अपने को स्वाध्याय में और आत्मविचार में दखल पहुंचे, ऐसे नहीं होने चाहिए। और स्वाध्याय और विचार में दखल कैसे नहीं पहुंचे कि उसका भिन्नत्व विचारें, तो जो भी होगा हमारे से तो भिन्न है, मेरे आत्मा को कोई लाभ नुकसान होने वाला है ही नहीं। और इतने ज्यादा काम भी नहीं होने चाहिए कि वांछन का, स्वाध्याय का, विचारने का समय ही नहीं मिले, उस प्रकार का बिजनेस नहीं रखना है। क्या ये काउंटर बिजनेस होता है, उसमें तकलीफ होती है कि एक साथ बहुत से लोग आ जाते हैं, उपयोग को निवृत्ति मिलती नहीं है। तो व्यवसाय आदि भी इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए कि जिससे हमारा उपयोग विचार कर सके, उपयोग में विचार चल सके। और इतना भी कार्य का प्रमाण भी इतना नहीं होना चाहिए कि हमको फुर्सत मिले ही नहीं स्वाध्याय करने की, विचार करने की फुर्सत मिले ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य के समय लिमिटेड कर देना चाहिए और हो सके उतना संक्षेप कर लेना चाहिए। अभिप्राय में वो बात होनी चाहिए कि हमारा जीवन बहुत कीमती है और हमारे जीवन में हमको पारमार्थिक कार्य करना है। सबसे पहले पारमार्थिक कार्य के लिए हमारा जीवन है, ये रोटी खाने के लिए हमारा जीवन नहीं है। पेट तो तिरिंच भी भरता है, पेट तो भरता है, मनुष्य ने ज्यादा कौन सा अक्लमंदी का काम किया, फिर भी हम हमारा समय आत्मकल्याण के लिए नहीं गुजारते तो अक्लमंदी नहीं है, मंद अकल तो है, वो बात जरूर है। इसलिए इतने ज्यादा काम नहीं होने चाहिए कि मांचन के या स्वाध्याय या विचार के लिए समय ही नहीं मिले हमको। यदि ऐसा हो तो अब इस लाइन में प्रवेश करने के पहले या पिताजी के वारसा में ऐसा हो तो बहुत काम रहता है, तो अपने को उस काम को कम करके, काम का प्रमाण कम करके निवृत्ति मिले ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि निवृत्ति मिले। अंतर निवृत्ति के लिए बाह्य निवृत्ति आवश्यक है, बाह्य निवृत्ति अंतर निवृत्ति का हेतु से ली जाए तो अवश्य पारमार्थिक लाभ होता है। निवृत्ति लेकर के प्रमाद में तो, प्रमाद सेवन तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो है ही। बाहर में भी काम ज्यादा होता है तो प्रमाद थोड़ी ना करता है, बहुत काम बाकी है। प्रमाद कौन करेगा, जिसको काम बाकी है, बहुत बाकी है ऐसा नहीं लगता वो करेगा। जिसको ऐसा लगेगा कि मुरीद तो बहुत काम बाकी है, पूर्ण शुद्ध होना है, निर्वाण पद की प्राप्ति करना है, उनको तो प्रमाद करने का अभिप्राय बिल्कुल रहेगा नहीं। जो सांसारिक प्रवृत्ति करता था अभी पारमार्थिक प्रवृत्ति में आ जाना चाहिए, उसको निवृत्ति कहते हैं संसार कार्य की अपेक्षा से। वास्तव में तो प्रवृत्ति को ट्रांसफर कर दिया। कार्य को कम कर देना चाहिए, निवृत्ति मिले ऐसा करना चाहिए, कितने काम छोड़ देना चाहिए, कितने काम को छोड़ देना भी चाहिए, जब भी तो निवृत्ति मिलेगी। परंतु कितने छूटे, छोड़ने में कितने छूटे, यह तो अपने शक्ति के प्रमाण में है। अपने परिणाम की शक्ति देख करके बाह्याचरण में एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे परिणाम भी बिगड़ जाए, निवृत्ति लेकर के हमारे परिणाम बिगड़ने लगे, या हम दीनता में आ जाए, हम लाचारी में आ जाए, तो ये बात तो फिर आत्मकार्य के लिए सही परिस्थिति नहीं है। अपने को निवृत्ति मिले, स्वाध्याय और विचार का टाइम मिले, इस प्रकार के मर्यादित काम होना चाहिए, इस प्रकार के मर्यादित काम होना चाहिए। तो प्रश्न है ना, बाहर का काम, बाहर के काम छोड़ देना, छोड़ देने का सवाल नहीं है, ये बाह्य त्याग की भूमिका नहीं है, लेकिन निवृत्ति के लिए तो एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। गृहस्थाश्रम में अमुक प्रकार के काम तो होते हैं, गृहस्थ होते हैं उनको तो अमुक प्रकार के काम तो होते हैं, परंतु अपने को निवृत्ति के लिए टाइम ही न मिले और बोझा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम ही नहीं मिले, स्वाध्याय विचार का समय ही नहीं मिले, ये कोई जीने का तरीका नहीं है। तो क्या करे, हमारा कारोबार इतना बड़ा है, समय नहीं मिलता, और आजकल तो उतने व्यवसाय में लफड़े होते हैं, गवर्नमेंट के वो मजदूर के, पुराने के, नौकरों के, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको संक्षेप कर देना चाहिए। पेट भरने में जरूरत कितनी, कितनी जरूरत पड़ती है, फालतू का खर्चा ज्यादा है, पेट भरने में उतना खर्चा नहीं होता। काम छोड़ना नहीं छोड़ना ये तो अपनी रुचि पर है, काम करने की रुचि होगी तो छोड़ करके भी क्या करेगा, और रुचि नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, आवश्यकता नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। पर उसके पत्र में जगह आता है कि जिसको पेट भरने के लिए, आजीविका के लिए संपूर्ण यानी पूर्ति व्यवस्था है, उनको अपने को पूछना चाहिए, अपने आप को पूछना चाहिए कि अब मैं किसके लिए करता हूं, मेरा ये व्यवसाय और प्रवृत्ति में रहने का मेरा क्या कारण है, अपने को पूछ लेना चाहिए। बाकी गृहस्थाश्रम में अपने को स्वाध्याय विचारने का समय मिले, इतना तो होना ही चाहिए, किसी भी हालत में अपने को आत्मकार्य चालू रखना है, चाहे जितनी प्रतिकूलता हो चाहे जितनी अनुकूलता हो, काम का बोझा हो स्वाध्याय और आत्मविचार के लिए हमारे पास अलग समय होना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। हाँ करना ही चाहिए, किसके लिए करना है, दूसरे के लिए थोड़ी ना करना है, अपने लिए तो करना है। देह के लिए कुछ भी प्रतिकूलता सहन करता है क्या, नहीं तो आत्मा के लिए करना है। अनंत बार देह के लिए आत्मा को गाला, अभी एक बार आत्मा के लिए एक भाव देह को भले ही गालना पड़े, भले ही देह गल जाए, दुबला हो जाए, क्रश हो जाए, कुछ भी हो जाए, आत्म कल्याण कर लेना ही, ऐसा निर्धार, दृढ़ निर्धार करना, उसका नाम मुमुक्षुता है, उसी का नाम मुमुक्षुता है। वही करते हैं, वही कहते थे, और उनका तो जीवन ही वही था, उनका स्वयं का जीवन इसका जीवन उदाहरण था। शादी होने के बाद भी घर छोड़ दिया, अपना घर भी छोड़ दिया, जो बड़ी बहन ने आश्रय दिया था वो घर भी छोड़ दिया, ससुराल को भी छोड़ दिया सत्संग के लिए। सत्संग का मूल्य कितना था, जिसको सत्संग का मूल्य नहीं है उसको आत्मकल्याण करना ही नहीं है, उसका अभिप्राय पकड़ने में आ जाता है, और जिसको सत्संग का मूल्य है वो किसी भी कीमत पे सत्संग को जुटाएगा, सत्संग को प्राप्त करेगा, वो इनका जीवन है, वो जीवंत उदाहरण है। और हर मुमुक्षु के लिए बहुत बड़ा आदर्श है, वो बहुत बड़ा आदर्श है। उस जमाने में घर छोड़ने से समाज वालों ने टीका टिप्पणी किया होगा, देखो ये लड़की भग गई, ये लड़की ससुराल वाले के वो बहू भाग गई, घर वाले कहेंगे कि लड़की भाग गई, बोलेंगे टीका टिप्पणी भी हो गई, लेकिन वो अवगुण नहीं था, वो पारमार्थिक दृष्टि से देखे तो गुण था, लौकिक दृष्टि से धार्मिक क्षेत्र की हर बात देखी नहीं जाती। हाँ बहुत बड़ा काम के लिए, और बहुत बड़ा काम किया भी, 3 साल में तो अनंत भव का छेद कर दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। प्रश्न 7वां प्रश्न, राग में सहज एकाकार हो जाते हैं, तो प्रश्न करने वाला खुद ही अपने लिए पूछता है कि हम तो राग में सहज रूप से एकाकार यानी तन्मय में एकाग्र हो जाते हैं, उससे मैंने राग से जुदा पड़ने का, जुदा होने का अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए यह समझाने की कृपा कीजिएगा, विनय से पूछा है कि हमारे परिणाम ऐसे हैं कि राग आता है उसमें भिन्नपना नहीं रहता, एकत्व हो ही जाता है, अब उससे भिन्न होने का, जुदा मैंने भिन्न होने का अभ्यास, मैंने प्रैक्टिस प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, कृपा करके समझाइए, समाधान देते हैं कि राग में एकत्व बुद्धि है, उस ही क्षण उसे विचार आना चाहिए कि यह राग सो मैं नहीं, मैं तो जानने वाला। क्या कहते हैं कि जिस वक्त राग में एकत्व बुद्धि होती है उस ही क्षण, बाद में नहीं, क्या उस ही क्षण विचार मैंने देखना चाहिए, विचार मैंने यहां देखना चाहिए, क्योंकि चालू वर्तमान है। भूतकाल हो गया, दूसरे क्षण में विचार आए, जागृति आए तो विचार हो जाता है, लेकिन उसी क्षण जागृति आवे, उसी क्षण में तो देखने का, अवलोकन होने का बनता है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष है, जो भूल हो रही है वो प्रत्यक्ष है और विचार का विषय परोक्ष होता है। विचार और अवलोकन में यही तो अंतर है। तो राग में एकत्व बुद्धि है, वही क्षण, पीछे वाली नहीं, वही क्षण उसमें विचार में जागृति आनी चाहिए कि यह राग है तो मैं नहीं हूं, मैं तो जानने वाला, मैं जागृत चैतन्य, जानने का कार्य होता है वही मैं हूं। ये जो राग है, विकल्प है, वो मैं नहीं हूं। राग कुछ मेरा स्वरूप नहीं, राग कोई मेरा स्वरूप नहीं है, ये कोई मेरा स्वरूप नहीं है। जो राग विभाव भाव है, जो भी राग आते हैं विभाव भाव है, वे आकुलता रूप है। कितना भी मंद राग हो तो भी आकुलता रूप है, उसमें कुछ शांति दिखती नहीं है। मंद राग में भी बिल्कुल शांति नहीं दिखती है। हाँ, वो तो है ही, अनंत अनुबुद्धि है ना, इसलिए बहुत राग, बहुत दुख है उसमें, अनंत दुख है। मंद राग में भी अनंत दुख है, उसमें कुछ शांति दिखती नहीं, थोड़ी दिखती ऐसा नहीं है, कुछ भी शांति दिखती नहीं है। आकुलता से भिन्न रहने वाला जो शांत स्वरूप है, उसमें राग की आकुलता नहीं है। आकुलता से भिन्न रहने वाला, जानने वाला जो है वो शांत स्वरूप है, ज्ञान है, वो स्वयं शांत स्वरूप है, उसमें राग की आकुलता नहीं है। किसी भी जीव के परिणमन में ज्ञान है वो शांत स्वरूप है, राग है वो आकुलता रूप है। एक का दूसरे में हमेश के लिए अभाव है, भिन्न है उसको भिन्न अनुभव करो, जो भिन्न है उसको भिन्न अनुभव करना, उसी को ही भिन्न किया ऐसा कहने में आता है, क्योंकि भिन्न को अभिन्न रूप में अनुभव कर रहा है, इसलिए अनुभव में फर्क करना है। राग में और ज्ञान में कुछ फर्क करना नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान रहता है, राग राग रहता ही है हमेशा। अनुभव भ्रांतिगत अवस्था में, अध्यासित अवस्था में एकत्व रूप हो रहा है, जो जुदा अलग है उसको भिन्न भिन्न अनुभव करना है, काम तो उतना ही है, इससे ज्यादा काम नहीं है। तो कैसे करें, कैसे करें कि एक आकुलता रूप है, एक शांत रूप है, दो का विरुद्ध स्वभाव है, फिर तुम दो को एक साथ कैसे एक रूप अनुभव करते हो? जब दो का विरुद्ध स्वभाव है तो एक दोनों को एक रूप अनुभव कैसे करते हो? दोनों का अलग अलग भिन्न स्वभाव होने से भिन्न ही अनुभव करना चाहिए। उसी प्रकार खाते पीते या कुछ भी कार्य के समय, किसी भी कार्य के वक्त उसको विचार आना चाहिए कि ये शरीर भिन्न है, खाने का भिन्न है, आहार भिन्न, पेट भिन्न भिन्न है, उस वक्त ये चीज अच्छी है या ये चीज खराब है, ऐसा राग आता है, ये संकल्पना है। कोई चीज सारी अच्छी खराब है ही नहीं, ये कल्पना आती है जीव में। क्या किया, प्रैक्टिस की बात है ना, इसलिए प्रैक्टिस के काल की बात लिया है कि खाते वक्त भी भिन्नता का अनुभव करो, पीते वक्त भी भिन्नता का अनुभव करो, और कुछ भी कार्य करते हो, शरीर भिन्न है, खाने का भिन्न है, आहार भिन्न है, शरीर भिन्न है तो पेट भी भिन्न है। बगल में एक पड़ोसी अपनी प्रवृत्ति करता है, मेरा इसमें निवास, निवास मैंने क्या कहना है मालूम, मेरी व्यापकता नहीं है, शरीर में मेरी व्यापकता नहीं है, और राग में भी मेरी व्यापकता नहीं है। व्यापक भाव से अपने चैतन्य पिंड में अपनी व्यापकता को वेदन से ग्रहण करो। क्या, अपनी व्यापकता को वेदन से ग्रहण करो, ज्ञान वेदन मेरे चैतन्य पिंड में व्यापक रूप है, राग में और शरीर में मेरा व्यापकपना नहीं है, ऐसा अंदर में प्रैक्टिस करना चाहिए, हर उदय में प्रैक्टिस करना चाहिए, लगातार सतत। भावयेत भेद विज्ञानम अछिन्न धारया, तो कल आया था, कल समीचार का आधार लेकर के उत्तर दिया था मैंने, से उनको खाने का समय होता था, जमता नहीं था, वो अपने में रहते थे, जब खाने के समय बोलते थे माता जी खाने का समय हो गया, अब आपको हम खिलाएंगे, खिलाएंगे मैंने पुरस्कारी करेंगे, आप पधारिए, अपना खाने का स्थान पर बिरा दिए, उनको अच्छा नहीं लगता था, तो क्या बोलते थे कंटाला आने से, ये आप लोगों का खाने का पड़गम बजा, पड़गम मैंने ढोल, ढोल पिटाते हो, चलो खाने का हो गया, चलो खाने का हो गया, तो जैसे कोई जबरन जाना होता है वैसे वो खा लेते थे उदासीनता से। हाँ ठीक है, ऐसा ही आता है, यह खुराक डलता है वो पेट में डलता है, देखो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये अवलोकन किस किस प्रकार होता है कि ये खुराक डलता है वो पेट में डलता है, मेरे नायक में डलता, यानी मेरे में कुछ नहीं आता है, वरना क्या होता है, अच्छा मुझे खाने का बहुत अच्छा मिल गया, चलो टाइम पे खाने का पेट भर गया, क्या नहीं, ये पेट में डलता है खुराक, मेरे में नहीं डरता है। जानने वाला उससे भिन्न हूं, मेरे में क्या होता है, जानने का कार्य होता है। जानने वाला मैं इससे भिन्न हूं, ऐसा बार बार विचार करे, मैंने प्रैक्टिस करे, विचार करे, मैंने अभ्यास करे, अभ्यास मैंने प्रैक्टिस, उसे यही जात का इस प्रकार बैठना चाहिए कि राग आता है वो कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। जो भी राग आता है वो कोई मेरा स्वरूप नहीं है। आता है लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। है वो तो ज्ञान की पर्याय है, प्रतिबिंब भी ज्ञान की पर्याय है। परमाणु की क्रिया मेरे में नहीं होती है, ऐसा भिन्न पड़े का अभ्यास करें। मेरी मंदता के कारण से, मेरे पुरुषार्थ की मंदता के कारण से राग आता है। मंद पुरुषार्थ में राग की उत्पत्ति है, तीव्र पुरुषार्थ में शुद्धोपयोग की उत्पत्ति है, वितरागता की उत्पत्ति है। तो मेरे मंद पुरुषार्थ से राग आता है, फिर भी विभाव परिणति से मैं भिन्न हूं। क्या विभाव परिणति से मैं भिन्न हूँ? जो भी राग आता है मैं जानने वाला विभाव से भीतर में भिन्न रहता हूँ। जानने में राग नहीं, राग में जानने का भाव नहीं है, राग तो अंधा है। राग में जानने का कार्य नहीं है, तो राग जान सकता नहीं। मैं सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूं, सिद्धालय में जैसे सिद्ध भगवान विराजमान है, उसी जाति का मेरा मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप बिल्कुल ऐसा है, किंचित मात्र उसमें फेर वास्तव में विभावीय वस्तु का मूल स्वरूप हो सकता ही नहीं, हो ही नहीं। कैसे विभावीय वस्तु नू मूल स्वरूप हो ही नहीं? आप क्यों नहीं बोल सकते गुजराती में? यानी वास्तव में विभाव वस्तु का मूल स्वरूप हो सकता नहीं है। और जो स्वरूप होता है, जो स्वरूप होता है आत्मा का, वो विभाव रूप होता नहीं है। जो स्वरूप है वो तो सहजात्म स्वरूप है, स्वाभाविक स्वरूप है, वो विभाव रूप हो सकता नहीं है। विभाव तो दुखदायक है, जो भी विभाव है वो तो आत्मा को दुख पहुंचाता है, दुख का अनुभव कराता है विभाव तो। और मैं तो निर्मल स्वभाव हूँ, मैं मलिन नहीं हूँ, मैं निर्मल स्वभावी आत्मा हूँ, मैं तो भिन्न हूँ, ऐसे अनेक रीत मैंने अनेक पड़खों से विचार करें या अनेक पड़खों से अवलोकन करें। राग आता है उस क्षण ही, उस ही क्षण राग आता है उस ही क्षण में भिन्न हूँ, वितराग स्वभावी हूँ। और ज्ञान वितराग स्वभावी है, ज्ञान में राग है ही नहीं, राग का अभाव स्वभाव है ज्ञान में, तो उसी क्षण लेते हैं क्यों? फिर से वो बताइए, उस ही क्षण क्यों लेते हैं? जो भेद ज्ञान है वो पीछे विचार करके नहीं होता है, भेद ज्ञान का विकल्प करे बाद में राग आने के बाद में, वो भेद ज्ञान नहीं है। जो राग आया था मैं नहीं, जो राग आया वो मैं नहीं, ऐसा नहीं, उस ही क्षण भिन्नता का अनुभव करे। राग की आकुलता यह मेरा स्वरूप नहीं है, जो राग की आकुलता है मेरा स्वरूप ऐसा है ही नहीं, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान को पकड़ करके करना है, विकल्प नहीं करना है, अपने ज्ञान तत्व को, ज्ञान को पकड़ करके मैं तो शांत स्वरूप हूँ, परम शांत अमृतमय शांति मेरे स्वरूप में है। कैसी शांति है? शांति सुधामय अमृतमय शांति, ये मेरा स्वरूप है। वितराग स्वरूप हूँ मैं, जानने वाला नायक हूँ, ये राग की विकृति यह मेरा स्वरूप है ही नहीं, ऐसे भिन्नता का अभ्यास करें, भिन्नता का अभ्यास करें, इस प्रकार से विकल्प करें वो बात नहीं है, अभ्यास करें। भेद ज्ञान कराते हैं, ये भेद ज्ञान का बराबर प्रकरण चल रहा है, इस तरह से भेद ज्ञान करना चाहिए। तो प्रश्न निकाला है वो सुनने वाले मुमुक्ष ने कि राग से भिन्नता होने में मुश्किली कठिनाई तो दिखती है, मुश्किली मैंने कठिनाई तो दिखती है, आप कहते हैं बोलते हैं उतना आसान काम हमको अंदर में नहीं लगता, कठिन लगता है, वो बात सही है। प्रथम एकड़ा लिखा तो भी कठिनाई हुई थी, अब लगता है कठिन? अब एकड़ा लिखने में कठिन नहीं होता, एक अंक एकड़ा मैंने एक अंक पहला अंक लिखा तो भी कठिन लगा था, एक दिन कठिन लगा था, आज वो आसान हो गया। ऐसे प्रैक्टिस से सब कुछ आसान है, राग और ज्ञान की भिन्नता अनादि से किया नहीं, किया नहीं इसलिए कठिन तो है, वो मानते हैं जानते हैं, लेकिन तुम अभ्यास करो, बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करने से आसान हो जाएगा, प्रयास करने से आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं, राग से भिन्न होने में कठिनाई तो दिखती है, राग के समय उसी वक्त राग से निराला जानने वाला तो मैं हूँ, यह कठिन तो पड़ता है, क्या वो कठिन तो पड़ता है, दुष्कर पड़ता है, फिर भी आपके कहने समझाने के बाद उतना ख्याल आता है, आप समझाते हैं तो बाद में उतना ख्याल आता है कि सौ विकल्प दिशा में भी बहुत करने का रह जाता है, इतना समझ में आता है। पूछने वाला ने ठीक बात किया है, ऐसा तो कठिन बात हमको लगती है, लेकिन एक बात और समझ में आती है कि हम तो हमारा काम बहुत बाकी है। हम जानते हैं, समझते हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन परिणमन करने में बहुत बाकी है। ये परिणमन का, अभी परिणमन का कार्य चालू करने का है। समझने का समय पूरा हो गया, अब समय आया है परिणमन होने का। तो परिणमन कैसे हो, जो बात समझ में आई है उसका परिणमन कैसे हो? तो लगा कि बहुत करने का बाकी है, ये कोई मामूली काम नहीं है। वेद ज्ञान का बार बार अभ्यास करना वो सहज तब हो सकता है कि आगे का स्टेज सब व्यवस्थित रूप से क्रॉस कर दिया हो तो, वरना सीधा कोई करना जावे तो उनको बहुत प्रयास करने पर भी होता नहीं है, ये बात हो जाती है। क्रम से आगे बढ़े तो सहज होता है, ये बात जरूर है, क्योंकि अगली अगली भूमिका में सहज आगे बढ़ा है आ जाएगा, लेकिन सीधा करने को जावे तो दुष्कर लगेगा। होगा नहीं इसलिए दुष्कर लगेगा, क्यों कठिन लगता है कि होता नहीं है इसलिए, सहज होता है तो कठिन लगेगा नहीं। क्रम में आवे तो सहज होता है, वो फायदा है। क्रम में क्या फायदा है? सहज होता है। क्रम में ऐसी बात है कि नीचे की भूमिका के साथ उसकी ऊपर की भूमिका का कनेक्शन है, पूरी कार्य पद्धति की श्रृंखला है। श्रृंखला मैंने साकड़, चेन, चेन। तो चेन में जैसे एक अंकोड़ा में दूसरा अंकोड़ा है, तीसरा वाला भले नहीं हुए, चौथा वाला नहीं भले हुए, पहले के साथ दूसरा वाला तो है ना। ऐसे वेदना की भूमिका में वैराग्य का क्रम शुरू होना सहज है। कैसे? कि जिसको वेदना आएगी वो कहां माथा मारेगा, उसका सब जगह से माथा मारने का छूट जाएगा। अंदर में वेदना चालू हो गई वो सब जगह से माथा मारने का छोड़ देगा कि मैं वेदना में पड़ी हूं, पड़ा हूं, मैं वेदना में पड़ा हूं, मुझे कहां फुर्सत है कहीं माथा लगाने के, मेरा मन ही नहीं करता कहीं माथा लगाने का। सहज वैराग्य जुड़ा हुआ है इसके साथ, जैसे एक चेन में एक अंकोड़ा के साथ दूसरा कड़ी, एक कड़ी के साथ दूसरे कड़ी लगी हुई है, वैसे वेदना के साथ वैराग्य, उदासीनता जुड़ी हुई है, उसी को वेदना कहते हैं। वेदना भी होवे और माथा भी लगा रहे, दो बात एक साथ नहीं बनती। सहज क्रम में आया ही नहीं, क्रम में आवे तो उदासीनता सहज है, और परिपक्व वेदना और उदासीनता आवे तो पूर्णता का लक्ष्य सहज है। पूर्णता का लक्ष्य आवे तो स्वरूप प्राप्ति की भावना सहज है, स्वरूप का खोज सहज है, सत्पुरुष की खोज सहज है, और अपने परिणाम को निष्पक्ष रूप से देखने का भी सहज है, और वो सहज संवेग पूर्वक होता है इसलिए संवेग भी सहज है। ये सब ऑटोमेटिक है, तो वेद ज्ञान तक सहज सहज पहुंचेगा, वो ऊपर की भूमिका में वेद ज्ञान तक पहुंचेगा, और बिना क्रम में सीधा वेद ज्ञान करने को जाएगा तो लगेगा बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, क्या करें, बहुत कठिन है, नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन कहां से होएगा? आगे वाली तो बात आई नहीं, और पीछे की बात सीधी उपाड़ ले, ग्रहण कर ले तो ऐसा तो होता नहीं है। क्या कहते हैं? इसमें उत्तर देते हैं। देखो यही बात क्या है, जिसको सहज होता है उसको विचार करना पड़ता नहीं है। देखो सहज होता है उनको कुछ खींच करके नहीं करना पड़ता है, अब लोगों सहज होता है, वेद ज्ञान सहज होता है उसको करना पड़ता नहीं है। यह तो जो अभ्यास करता है उसकी बात है, प्रैक्टिस में आया है उसकी बात है, प्रैक्टिस नहीं करता है उसकी बात नहीं है, खाली विचार करता है, खाली स्वाध्याय करता है, पढ़ लेता है उसकी बात नहीं है, अब परिणमन करने के लिए जो प्रैक्टिस करता है उसकी बात चल रही है। किस प्रकार से करना, यह तो वास्तव में अपने को विचारने का है, अंदर में किस प्रकार से कार्य करना तो खुद को विचार करने का है। गुरुदेव ने बहुत समझाया है, ये सब बात गुरुदेव ने पीक पीक करके बहुत समझाया है, फिर भी इस प्रकार से अभ्यास करें, इस प्रकार से प्रैक्टिस करें तो विकल्प से भिन्न होने का प्रसंग आता है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करें तो भिन्न होने का प्रसंग आता है। प्रैक्टिस करे तो सफल होवे ना, प्रैक्टिस नहीं करे तो सफल कैसे होएगा। हाँ, वो क्या है, आदत बन गई है, प्रयोग के विषय को भी थियोरेटिकल परिस्थिति में रखने की आदत बन गई है। होना चाहिए ऐसा कि थियोरी मिले तो प्रयोग चालू हो जाए, क्या होना चाहिए कि शास्त्र में से और ज्ञानी इसके पास से थियोरी मिले तो प्रयोग चालू कर देना चाहिए, बजाय इसके प्रयोग की बात करते हैं तो थियोरी के ढांचे में डाल देते हैं, ये सब गड़बड़ है, इसलिए काम नहीं हुआ। काम नहीं होने का ये कारण है क्योंकि प्रयोग की बात तो बोलेंगे तो बात तो होगी, व्याख्या डेफिनेशन होगी तो थियोरी होगी, और थियोरी की आदत हमको हो गई है तो प्रयोग रह गया और थियोरी की बात भाषा में रह गई। राग और ज्ञान भिन्न है, देह और आत्मा भिन्न है, द्रव्य और पर्याय भिन्न है, बस एक मिनट में खत्म हो गया भिन्न। फिर ये उलझन आएगी कि अरे अनुभव तो होता नहीं, लेकिन अनुभव तो अनुभव के प्रयास से होता है। कल रात को भी बात आई थी और स्पष्ट करते हैं कि अनुभव तो अनुभव के प्रयास से होता है, वांछन से नहीं होता, स्वाध्याय से नहीं होता, विचार से नहीं होता, श्रवण से नहीं होता, चिंतन से नहीं होता। ये अभिप्राय का विषय में वो बात लिया था, ऐसा अभिप्राय शुरू से होना चाहिए, ये तो सब बाह्य क्रिया है, उसको साधन कहते हैं, बाह्य साधन कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो बाह्य साधन है, वो साधन अंतर साधन होता है उसके लिए वो बाह्य साधन बोला है, वरना बाह्य साधन भी साधन नहीं है, अटकने का स्थान है, वो भी अटकने का स्थान है। अटकने का स्थान कहो या बाधक कहो, एक ही बात होगी। अटकने का स्थान कहो या बाधक बोल दो, बहुत स्पष्ट आता है। अपना ख्याल ध्यान जाना चाहिए, उसमें बहुत स्पष्ट आता था। फिर भी इस प्रकार से अभ्यास करें, खाते पीते चलते बैठते इस प्रकार से अभ्यास करें तो विकल्प से भिन्न होने का, मैंने विकल्प का भिन्न ज्ञान में अपना अनुभव करने का प्रसंग आएगा, आता है। अब कहते हैं कि ऐसा विचार में नक्की किया हो, निर्णय किया हो कि शरीर तो जड़ है, समझ में ले लिए हो बात के, शरीर तो जड़ है, मैं भिन्न हूं, परंतु शरीर में कुछ रोग आवे या खाने पीने की क्रिया होती हो उस वक्त मैं भिन्न हूं और यह जड़ है, ऐसा भाषण कहाँ होता है? भिन्न हूं ऐसा विचार होता है, भाव भाषण कहाँ होता है? भाषण का विशिष्ट आता है कि नहीं आता है? अपने यहाँ के मुख सुखे अपने भाव भाषण की चर्चा काफी चलती है ना, तो देखो किसी और के वांछन में बैठे थे तो उन्होंने भाव भाषण कैसे होता है, तो भाव भाषण जैसे कोई चीज है ही नहीं, क्या जवाब दिया? भाव भाषण जैसी कोई बात है ही नहीं, क्यों? कि खुद को उस बात का पता नहीं था। गुरुदेव ने, मैत्रेय ने, सभी ज्ञानियों ने ये भाव भाषण की बात लिया है। भाव भाषण में लगता है, लगना वो अनुभव की बात हुई, तो अनुभव करना है, अनुभव करने के लिए अनुभव की बात होनी चाहिए ना, अनुभव करने के लिए बिना अनुभव की बात किस काम की, कौन से काम में आएगी? क्या कहते हैं कि समझ में नक्की किया हो, नक्की किया हो, मैंने समझ में नक्की किया हो, धारणा में नक्की किया हो कि शरीर तो जड़ है, ये तो दुनिया वाले सब जानते हैं, दुनिया में भी लोग जानते हैं कि जब मृत्यु होती है तो ये इसको शरीर को मुर्दा बोलते हैं, शरीर नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं? मुर्दा बोलते हैं या शब कहते हैं उसको, शरीर नहीं कहते फिर, तो उसमें जीव नहीं है, वो बात तो सारी दुनिया में खुली है। ऐसा कोई काम होता है क्या? वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। देव और आत्मा का भिन्नता का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ कि प्रयोजन भूत ज्ञान होना चाहिए, मैंने ज्ञान होते ही प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए, जब ही ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुए तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो तो दुनिया सारी जानती है कि देह और आत्मा भिन्न है, वो भिन्न हो जाता है तो फिर शरीर को जलाया जाता है, अंतिम क्रिया अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए नक्की भले ही किया हो कि शरीर तो जड़ है, मैं भिन्न हूँ, परंतु शरीर में कुछ भी रोग आवे उस वक्त या खाने पीने की क्रिया होती हो उस वक्त मैं भिन्न हूँ और यह जड़ है, ऐसा भाषण कहाँ होता है? तो नक्की किया, उसमें भाव भाषण नहीं है, भाव भाषण होना चाहिए। ऐसे नक्की करने से काम नहीं चलेगा, वो तो दुनिया वाले सब जानते हैं। और वैराग भी आता है कि किसी किसी को तो वैराग भी आता करे, रे बेचारा मर गया, क्या ले गया, दुनिया में कुछ नहीं है, अपने को भी कुछ नहीं है, तो शमशान वैराग हो जाता है, क्योंकि प्रयोजन भूत ज्ञान हुआ नहीं है, भाव भाषण नहीं हुआ, लगना टू फील। ठीक बात है कि जो विचार करता है कि ये खाने की शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया है, भिन्न है, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा जो विचार करता है उसको भिन्नता लगती नहीं। भिन्नता का विचार होने पर भी भिन्नता लगती नहीं, और भाव वासन वाले को भिन्नता लगने लगती है। ये दोनों में अंतर है। बाहर से पहचानने की चीज नहीं है। उसको लगेगा नहीं, उसमें क्या है, उसको क्या लगेगा फिर? भिन्नता नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? तो जो चीज वो खाएगा ना उसमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ये बात हो जाएगी। दोनों का अनुभव में बहुत अंतर है। उसको जो खाने पीने की चीज है उसमें या तो अच्छापन लगेगा या तो बुरापन लगेगा, कुछ न कुछ लगेगा। और भिन्न जो भिन्नता जिसको लगेगी उसका अच्छापन बुरापन लगेगा, जैसा स्वाद है वैसा मालूम पड़ेगा, लेकिन भिन्न है ऐसा मालूम पड़ेगा। बहुत अंतर है अनुभव में। विचार में मानेगा लेकिन लगने में फर्क हो जाएगा। क्या है ये पिन पॉइंट बात कहाँ है? लगना लगता क्या है? अच्छा बुरा लगता है, भाव वासन नहीं है। भिन्नपना लगता है, स्वाद से अपना भिन्नपना लगता है तो उसके भाव, उसका भाव वासन होता है। देखिए दूसरी बात है, एक सामान्य गणित की बात मैं देता हूं कि एक वत्ता एक दो होता है, और एक उसमें रखो तो तीन होता है, उसमें एक और रखो तो चार होता है। कितना सीधा साधा गणित है ना, ऐसे दस होता है, ऐसे सौ होता है, एक एक करके ऐसे हजार होता है, लाख होता है, करोड़ होता है, अरब होता है, अनंत होता है, होता है कि नहीं, एक एक करके। अब आपको एक मृत्यु की भीति लगती है कि नहीं लगती है? ये लगने की बात पूछ रहा हूँ, विचार की बात नहीं है। विचार आता है, मृत्यु की भीति लगती है कि मैं मर जाऊंगा तो, कभी भी मर जाऊंगा तो, मुझे रोग आ जाएगा तो, कैंसर हो जाएगा तो, ऐसे रोग हो जाएगा कि जो जीवलेन हो गए, मृत्यु को हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो, लगता है कि नहीं लगता है भाई? मृत्यु का भय, बीमारी का भय लगता है कि नहीं लगता है? अनिश्चितता का भय लगता है कि नहीं लगता है? तो एक मृत्यु का भय लगता है। अनंत जन्म मरण का कारण मिथ्यात्व और अज्ञान खड़ा है, प्रचंड और प्रतिबंध खड़ा है, तो उसका भय क्यों नहीं लगता है? अनंत लगना चाहिए, एक मृत्यु का भय लगता है, इससे अनंत गुणा ये लगना चाहिए, उसके बजाय बिल्कुल नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं कि एक मृत्यु से अनंत मृत्यु अनंत गुणा है, लेकिन भाव भाषण नहीं है। विकल्प में जानते हैं, विचार में समझते हैं, लेकिन भाव भाषण नहीं है तो लगता नहीं है। तो हर स्टेज का भाव भाषण में फीलिंग आता है, फील होता है, और हर स्टेज के विचार में फील नहीं होता है। और यही अंतर है, थिंकिंग और फीलिंग दो अलग अलग बात है। हमारी अनुभव की, अनुभव का मार्ग है, स्वानुभूति का मार्ग है, उसमें शुरू से ही फीलिंग की लाइन पकड़नी चाहिए। हम थिंकिंग की पकड़ते हैं, क्या गलती होती है हमारी? थिंकिंग की पकड़ती है, बुद्धि वाले हैं ना हम लोग, तो थिंकिंग की पकड़ लेते हैं, फीलिंग की पकड़ नहीं सकते, यही हमारी क्षति है, यही गलती है। आप थिंकिंग को ज्यादा वजन ही मत देना है। थिंकिंग को वो तो चाहे तो उतना सूक्ष्म लेके आए हैं, उसमें क्या नया हो गया? बहुत बार थिंकिंग हो गया, अनंत बार कर लिया, उसमें क्या दम है? कुछ दम नहीं। ऐसा करके उसको हल्का कर दो। फीलिंग क्या होता है उसके ऊपर वजन रखो, क्योंकि ये स्वानुभूति की लाइन है। अनुभव पद्धति से ही काम होगा, विचार पद्धति अनंत बार हो गई तो हमारा काम नहीं हुआ है। इसलिए ये जो सारी चेन है वेदना की, जुरुणा के जो 86 नंबर के पत्र में, 195 नंबर के पत्र में जो बात दिया है, वहां से लेकर के जो भी बात लिखा है, जो भी दिया है, वो सब अनुभव पद्धति का लाइन दिया है। हमको वो लाइन पकड़नी चाहिए, वो लाइन में आना चाहिए, जब ही हमारा कल्याण होगा। वरना ऐसे स्वाध्याय करते रहेंगे और जिंदगी पूरी हो जाए, कुछ नहीं होगा।
लेकिन क्या करो, बहुत प्रयत्न करता हूँ, होता नहीं है, क्या करना? यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं कार्य तो कर सकता है, तो होता नहीं है, तो करना है तो दूसरी जगह अटके बिना करो ना। बहुत जगह अटकता है, जब केंद्र जाना है दो बार में तो करेंगे, सिद्धि भी रखनी है, सिद्धि भी रखनी है, दो बार बना सकोगे तो सिद्धि रखो, या तो ऐसे नायक और जोर लगा करके निर्णय करे तो यथार्थ प्रकृति कर सकता है बिना अटके। दूसरा प्रकृति हो जाएगी स्वयं विचार करके और अंतर में से खर्ची करके जोर लाए, निर्णय में भी जोर ना चाहिए। मैं एक जानता हूँ, मैंने गाया दी
करेगा
तो होगा, तो